दीवा को हीट स्ट्रोक लगने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर उसी रात आर्यांश उसे घर ले आया था। अगली सुबह वो ऑफिस चला गया था और उसने दीवा को सख्त हिदायत दी थी कि वो घर से बाहर ना निकले। आर्यांश के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए दीवा घर पर ही थी और आराम कर रही थी। हालांकि उसे काफी बोरियत महसूस हो रही थी। कॉफी पीते हुए वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी। अपनी बिजी लाइफस्टाइल के चलते दीवा ने पोस्ट करना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन वो आज भी अपनी यूनिवर्सिटी और बाकी दोस्तों के पोस्ट देखा करती थी। ये सब कितना बोरिंग है, बिजी लोगों को कहाँ सोशल मीडिया चलाने का टाइम मिलता होगा। आर्यांश भी, दीवा बोलते हुए रुक गई और उसे आर्यांश का ख्याल आया। उसने सिर हिलाकर कहा, आर्यांश का भी तो सोशल मीडिया अकाउंट होगा। दीवा आर्यांश के बारे में और जानना चाहती थी। उसके अकाउंट का पता लगाने के लिए वो जल्दी से उसका टैबलेट ले आई, जो आर्यांश से ज्यादा वो इस्तेमाल करती थी। इस वजह से आर्यांश ने अपने लिए दूसरा मॉडल भी मंगवा लिया था। दीवा ने जब आर्यांश का टैबलेट देखा तो उसे होम पेज पर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन मिला। उसने जल्दी से उसे खोला और वो आर्यांश के अकाउंट में ऑटोमेटिकली लॉग इन हो गई। आर्यांश का अकाउंट उसके नाम के बजाय किसी और नाम से था। आर्यांश का सिर्फ एक फॉलोअर देखकर दीवा ने हैरानी जताते हुए कहा, ये क्या मजाक है, कपूर इंटरनेशनल के मालिक का सिर्फ एक ही फॉलोअर है। दीवा ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने आर्यांश के पोस्ट देखना शुरू कर दिया। अब तक उसने 4 पोस्ट की थी, जो हर साल एक ही खास दिन की हुई थी। उन पोस्ट्स को देखकर दीवा की आंखें नम हो गईं। हर पोस्ट में एक ही बात लिखी थी, मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस एक लाइन ने दीवा को अंदर तक छक छोड़ दिया। वो समझ गई कि ये आर्यांश अपने पहले प्यार के लिए लिख रहा था। क्या वो उसे इतना बेइंतहा प्यार करता था कि अब तक उसे भूल नहीं पाया था। हर पोस्ट में एक ही बात थी और तारीख भी वही थी, बस साल बदल जाता था। वो अब भी उससे प्यार करता है। अब भी का क्या मतलब हुआ, दीवा ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बच्चों की तरह रोने लगी। तभी दीवा को सुमन के आने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि सुमन उसे रोते हुए देखे, और खासकर ये आर्यांश को पता चले कि वो उसके लिए रो रही थी। दीवा मन ही मन खुद को समझाने लगी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है कि आर्यांश का कोई सोशल मीडिया अकाउंट ना हो, ये भी हो सकता है कि ये अकाउंट उसका ना हो। अकाउंट का नाम भी तो अलग है। मानती हूँ कि सबके लिए पहला प्यार खास होता है, लेकिन उसके जाने के बाद हम वक्त रहते उसे भूल जाते हैं। हर साल बहुत ज्यादा होता है। दीवा को इस तरह तकिए के पीछे छुपे देखकर सुमन ने उसके पास आकर पूछा, मिस गोयनका, आप इस तरह तकिए में छुपकर क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुमन माँ, बस मेरा चिली पुडिंग खाने का मन कर रहा था। क्या आप बना देंगी? दीवा ने अलसाई आवाज में कहा, ताकि सुमन को लगे कि वो सो रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बनाती हूँ, बस थोड़ा समय दीजिए, सुमन ने खुश होकर कहा और तुरंत किचन में चली गई। दीवा बहुत कम किसी चीज की मांग करती थी, लेकिन जब भी वो कुछ खाने को कहती तो सुमन बड़े प्यार से उसके लिए बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर इंटरनेशनल में आर्यांश अपने काम में व्यस्त था। तभी सार्थक उसके पास आया। वो चेहरे से परेशान लग रहा था। अंदर आते ही सार्थक ने परेशान आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, क्या आपको पता चला? अग्रवाल फैमिली ये बात फैला रही है कि वो जमीन उनकी है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा सार्थक, वो जमीन मेरी है। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी चीज कोई मुझसे छीन नहीं सकता, आर्यांश ने एविल स्माइल के साथ कहा। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने एडवांस पे कर दिया है, सार्थक ने हिचकिचाते हुए बताया। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो, मेयर की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे खिलाफ जा सके। बस वो चाल चलने की कोशिश कर रहा है, मैं भी देखता हूँ कि वो कहाँ तक जाता है, आर्यांश ने बेपरवाही से कहा। और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सार्थक ने तुरंत पूछा। उसे लगता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर का फायदा होता है, वो गलत है। हम दोनों ग्रुप की लड़ाई का फायदा वो उठाना चाहता है, लेकिन मेरे रहते ऐसा मुमकिन नहीं। मैं देखता हूँ कि उसकी हिम्मत कितनी बढ़ती है, आर्यांश ने जवाब दिया। सार्थक समझ गया कि आर्यांश के होते हुए कपूर इंटरनेशनल किसी भी तरह के नुकसान में नहीं जा सकता था। उसने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और फिर बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, क्या आज रात आप पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आर्यांश ने जवाब दिया। वैसे भी ये एक बिजनेस पार्टी थी जिसमें कपूर फैमिली ही होस्ट होती थी। ठीक है, फिर मैं सूट तैयार करवा दूंगा, सार्थक ने जवाब दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां ज्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ आते थे। दीवा आर्यांश के साथ लगभग 1.5 महीने से रह रही थी, लेकिन आर्यांश उसे अभी तक कहीं लेकर नहीं गई थी। यही सही वक्त था जब वो दीवा को सबके सामने ले जा सकता था। आर्यांश ने तुरंत दीवा को कॉल किया। कुछ सेकंड बाद दीवा ने कॉल रिसीव किया। हेलो, दीवा जल्दी से बोली। वो जेली पुडिंग खा रही थी, जिस वजह से उसकी आवाज थोड़ी अलग लग रही थी। क्या खा रही हो? आर्यांश ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। जेली पुडिंग, ये बहुत टेस्टी है, सुमन माँ ने मेरे लिए बनाई थी, दीवा ने जवाब दिया। बोलते हुए उसने सुमन की तरफ देखा, जो उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। ठीक है, जल्दी खत्म करो और मेरे पास ऑफिस आ जाओ, और याद रखना ज्यादा मत खाना, मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है, आर्यांश ने उसे छेड़ने के लिए कहा। हाँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवा ने मुंह बनाकर कहा और जल्दी से कॉल कट कर दिया। उसकी इस हरकत पर आर्यांश के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई। उसे दीवा को छेड़ना अच्छा लगता था। वो अंदर से दीवा से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन उसका दिल दीवा की तरफ खींचा चला जाता था। आर्यांश ने अपनी आंखें बंद की और गंभीर अंदाज में कहा, काश हम दोनों की मुलाकात पूरी तरह से इत्तेफाक होती। मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन प्यार हो रहा है। लेकिन प्यार नहीं हो सकता। तुमने मुझे मेरी जिंदगी के वो खाव दिए हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता, दीवा गोयंका। आर्यांश का मूड खराब हो गया था। उसने अपनी ड्रॉअर से उस लड़की की फोटो निकाली जिसे वो दिन में न जाने कितनी बार देखता था। काश तुम मेरे साथ होती पागल लड़की, शायद फिर मेरी जिंदगी ही अलग होती, आर्यांश ने फोटो को देखते हुए नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा। वहीं दूसरी तरफ दीवा आर्यांश के कॉल के बाद उसे मिलने जाने की तैयारी करने लगी। अचानक उसने सुमन से कहा, सुमन माँ, क्या आप थोड़ा जेली पुडिंग पैक कर देंगी? मैं आर्यांश के लिए ले जाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दीजिए, सुमन ने जवाब दिया और तुरंत किचन में चली गई। दीवा जल्दी से अपने कमरे में गई, कपड़े बदले और आईने में खुद को देखने लगी। वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कब उसने अपने लुक के बारे में इतना सोचना शुरू कर दिया था। उसे इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसी दिखती थी, वो पूरे समय काम में डूबी रहती थी। तैयार होने के बाद दीवा ऑफिस पहुंची। वहां सब उसे मिस गोयंका कहकर बुला रहे थे और उसे ग्रीट कर रहे थे। दीवा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आर्यांश के सेक्रेटरी ने उसे उसके केबिन तक छोड़ा। जैसे ही दीवा ने अंदर कदम रखा, आर्यांश की गहरी आवाज गूंजी, तुम आ गई, चलो जल्दी आओ। दीवा ने गहरी सांस ली और अंदर गई। वो इस जगह पर दूसरी बार आई थी। पहली बार जब वो आई थी तब आर्यांश और उसके बीच काफी बहस हुई थी। अंदर जाकर उसने देखा कि आर्यांश अपनी डेस्क पर बैठकर काम में व्यस्त था।
मैं आ गई, दीवा ने उसका ध्यान खींचने के लिए कहा। आर्यांश ने नजर उठाकर सामने देखा। उसने देखा कि दीवा के हाथ में एक बैग था। उसने सिर हिलाकर पूछा, क्या लेकर आई हो? इसमें बॉम्ब है या कुछ ऐसा जो तुम्हारे ऑफिस में बड़ा धमाका कर दे, दीवा ने उसे छेड़ने के लिए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस देखने के बाद कोई तुम्हें किसी तरह का एक्सप्लोजिव दे देगा? आर्यांश ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा। वो दीवा का मजाक उड़ा रहा था। उसके मजाक पर दीवा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम कितने बुरे हो, मैं काबिल डॉक्टर हूँ, फिर भी तुम मेरी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, तो तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो? आर्यांश ने भौं चढ़ाकर पूछा। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस थोड़ा जेली पुडिंग बच गया था, सोचा खाना फेंकना अच्छा नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे लिए ले आई, दीवा ने बेरुखी से जवाब दिया। आर्यांश ने उसे बैग से जेली पुडिंग निकालने का इशारा किया। हालांकि उसे मीठा कम ही पसंद था, लेकिन वो दीवा के इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, जो बड़े प्यार से उसके लिए ये लेकर आई थी। जैसे ही दीवा ने पुडिंग निकाली, आर्यांश ने उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, अब तुम लेकर आई हो तो अपने हाथों से खिला दो। लेकिन मैं क्यों खिलाऊं, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? दीवा ने उसे घूरते हुए कहा। हाथ तो हैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें इनका एक अलग क्रिएटिव यूज करके दिखाऊं? आर्यांश ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। दीवा बेवकूफ नहीं थी कि उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे का राज ना समझ सके। उसने आर्यांश से उलझना ठीक नहीं समझा। वो उसके पास गई, चम्मच में पुडिंग भरकर उसकी तरफ करते हुए बोली, ये लो, मुंह खोलो और खाओ। ऐसे नहीं, आर्यांश बोला और उसने दीवा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अब खिलाओ। आर्यांश के इतने करीब होने पर दीवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी पलकें झुका ली। वो आर्यांश को खिलाने ही वाली थी कि वो फिर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे खाऊं तो पहले मुझे किस करो। अब ये क्या जिद हुई, दीवा ने मासूमियत से कहा। आर्यांश ने बिना कुछ बोले कंधे उचकाए। वो आसानी से मानने वाला नहीं था। दीवा ने उसके गाल पर हल्का सा किस कर लिया, लेकिन ये आर्यांश के लिए काफी नहीं था। उसने दीवा को सॉफ्टली खींचकर अपने करीब किया और उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। वो उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। एक लंबे किस के बाद आर्यांश दीवा से अलग हुआ और मुस्कुराकर बोला, अब खिला सकती हो, लेकिन ये वाला ज्यादा टेस्टी था। उसकी बात सुनकर दीवा के गाल लाल हो गए। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप आर्यांश को जेली पुडिंग खिलाने लगी। अच्छा मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, दीवा ने उसे खिलाते हुए पूछा। आज रात एक बिजनेस पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना है, आर्यांश ने बताया। उसकी बात सुनकर दीवा कंफ्यूज हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैं ही क्यों, तो फिर किसे लेकर जाऊं? आर्यांश बोला, हमने यही डिसाइड किया था कि हम अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करेंगे, दीवा ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा। उसे डर था कि इतनी बड़ी बिजनेस पार्टी में अगर मीडिया ने उसे आर्यांश कपूर के साथ कैप्चर कर लिया तो सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, खासकर उसके पेरेंट्स को। आर्यांश दीवा की परेशानी समझ सकता था। उसने कुछ पल रुककर कहा, वो एक मास्क पार्टी है, तुम मास्क पहनकर जाओगी तो कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। आर्यांश ने दीवा के लिए रॉयल बिजनेस पार्टी को मास्क पार्टी में बदल दिया था। दीवा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया, हालांकि उसे डर भी लग रहा था। इतनी बड़ी पार्टी में भले ही उसके पेरेंट्स ना आए, लेकिन आर्यांश के साथ किसी लड़की का होना अपने आप में एक न्यूज़ था। ऐसे में वो पार्टी में जाकर अपने लिए मुसीबतें ही बढ़ा रही थी।